पिता ने कहा, अब सब अच्छे हो गए हैं और कुछ सैर करने चलना चाहिए और कुछ यात्रा भी हो जाएगी, खीर भवानी भी हो आएंगे। दूसरे दिन उन सबको लिए हुए एक हाउस बोट अमीरा कदल के नीचे से निकल गया। जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। नित्य शाम को खा पी चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या कभी छत पर सारे परिवार की मीटिंग होती, जिसमें कभी कभी लड़कों से कहानियां सुनाई जाती थी, पर बहुधा पिता या माँ ही कहानियां कहा करते। कहानियां वही होती जो भारत में बच्चों को सुनाई जाती है, देवताओं की कहानियां, पुराण गाथाएं, कहानियां जिनमें नैतिक उद्देश्य का पुछल्ला अवश्य लगा रहता था। ईश्वर की बढ़ाई के छोटे छोटे दृष्टांत सच्चाई का महत्व सिद्ध करने के लिए लंबे लेक्चर, मितव्ययिता के बारे में कोई चुटकुल्ला, उस लड़के के कमीनेपन पर लंबी फटकार जिसने सवेरे मुरब्बा चुराया था और स्वीकार नहीं किया। कभी कभी ये कहानियां मनोरंजक होती, लेकिन जब नैतिक उद्देश्य सिद्ध होने लगता तब शेखर उब उठता। अपने मन में उसने इन दैनिक मीटिंगों का एक नाम दे रखा था, माँ की डांट। कहानियां सुनते सुनते शेखर सोचा करता, यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझ पर प्रकट होता। कभी उसके मन में यह संदेह उठता है कि मैं बहुत निर्बल और अयोग्य हूँ, तभी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। कभी उसका छोटा सा व्यक्तित्व अपना सारा साहस एकत्र करके पूछता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। या निरंतर दबा हुआ अविश्वास या अविश्वास की अनुपस्थिति, या निरंतर चौकसी की कहीं, या संदेह का कोई शब्द कि भी किसी पर प्रकट ना हो जाए, उस खाई डालती है। इसका बोझ उसके अविकसित मस्तिष्क के लिए असह्य है। उसे जान पड़ा था कि शीघ्र ही कोई ऐसा अवसर आने वाला है जबकि वह दबा हुआ संदेह फूट पड़ेगा और ना मालूम क्या रूप धारण करेगा। पर बाहर से वह शांत था और हाँ, सुखी भी था। मानस बल का वक्ष रात, बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा था। आज दिन भर वह क्या कुछ करता रहा है, वह सौंदर्य को ठीक ठीक नहीं समझता, लेकिन उसके सामने पाकर जाने क्यों चंचल हो उठता है, स्फूर्ति से भर जाता है और भूत की तरह किसी काम में लग जाता है। सौंदर्य को देखकर वह तन्मय नहीं होता, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य में मानो जीवन का जोर बढ़ जाता है। आज उसने असंख्य कमल तोड़कर उनके हार बहन को पहनाए हैं, उसे देवी बनाकर पूजा है, संध्या को आरक्त सूर्य की विदा दी है, झील में चंद्रोदय देखा है और सबसे बढ़कर आज उसने सरस्वती को आत्मविस्मृति में गाते सुना है। गीत के शब्द क्या है उसे नहीं याद, वे कुछ नहीं है, उसका भाव भी कुछ नहीं है, वह तन्मयता, गीत के निर्गुण गीतमयता ही सब कुछ है। मानस बल का वक्ष रात, बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। नीचे बहन का स्वर बोला रहा है, शेखर अब उतर आओ। पर वह उतरता नहीं, उतर सकता नहीं। वह जानता है कि कोई चिंता भी नहीं उतरने की, बहन स्वयं लिवाने आएगी। वह आती है, आकर चारों ओर देखती है और स्वयं चुपचाप बैठ जाती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है। दोनों चुप हैं, निश्चल है, जीवन खड़ा है और खड़े होने में ही कितनी तीव्र गति से भागा जा रहा है। ना आगे ना पीछे, किंतु एक नाम ही, अपरिमेय दिशा, मैं। रात इतनी अतिशय सुंदर है कि शेखर उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकता। उसकी इस अवर्ण्य सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रि ने, यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके? और यदि वह ईश्वर ने नहीं बनाई तो बाकी संसार ही क्यों उसकी कृति है? सरस्वती भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रही थी। शायद वह भी रात से पूछ रही थी वह उत्तरहीन प्रश्न, ईश्वर तू है? क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज। दिन फट रहा है क्योंकि सोकर उठे हुए शेखर को जान पड़ रहा है कि दिन का प्रकाश कुरेद कुरेद कर प्रत्येक कंदरा और ग्रहर पर से उस सौंदर्य को उखाड़ फेंक रहा है जो रात में सर्वत्र छाया हुआ था, जीता था, उस पर इतना हावी हो रहा था कि वह और कुछ देख नहीं सकता था। झील कहीं पीछे रह गई है। बजरा खीर भवानी के मंदिर के पास एक गंदले नाले में खड़ा है। आगे पीछे डोंगियों की कतार लग रही है और धुआं दे रही है। शेखर को उसके भाइयों को सफेद कपड़े पहनाए गए हैं और सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पिता के हाथ में कुछ बेल पत्र और कुछ ताजे कमल के फूल हैं। माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री। शेखर सबसे आगे आगे चला जा रहा है। मंदिर से कुछ दूर खड़ा शेखर कौतूहल से मंदिर की ओर देख रहा है। बाकी सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पिता शेखर को अलग खड़े देखकर साथ आने का इशारा करते हैं, पर वह अपने स्थान से नहीं हिलता। पिता दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन शेखर जानता है कि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई है। बजरे में लौटते ही पिता कठोर स्वर से पूछते हैं, शेखर तुम मेरा कहा क्यों नहीं माना? एक क्षण में शेखर चुप रहता है, एक लंबी सांस घिसता है, फिर वह स्वयं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, वह क्या कह रहा है, लेकिन बड़े दिनों की संचित हुई शक्ति राह पाकर फूट पड़ती है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। या कहने के लिए शेखर सबके सामने बैंत से पीटा, लेकिन इस वाक्य को कह सकने की सामर्थ्य का अभिमान व किसी ध्रुव निश्चय की शांति व आत्मसम्मान की लहर व विश्वास के लिए पिटने का प्रज्वलित आनंद और वह अपूर्व विजय जो एकांत में दबे स्वर में उसके भाइयों ने बताया कि वे भी ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते। ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जिस ईश्वर के होने ना होने को हम समझ सकते हैं, जिसको निपुण निराकर अपरिमयी सब कुछ कहकर भी जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को अपनी मुट्ठी में कर सके, किसी अर्थ से कह सके कि वह है, उस ईश्वर के होने ना होने से क्या? ईश्वर यदि है तो वह ही वही है जिसके बारे में यह भी नहीं कह सके कि वह है जो हमारे विश्वास के वृत्त से भी बाहर हो। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सके वह नहीं है। एक दांव ईश्वर ने और खेला। ईश्वर के बारे में ऐसे मुहावरे का प्रयोग करना सख्त ठिठाई होती यदि शेखर ईश्वर को अपना बराबर का प्रतिद्वंद्वी ना जानकर उससे कुछ भी अधिक समझता। लेकिन जब तक शेखर पर ईश्वर का स्वर शक्तिमत्ता या मानवता पर शक्तिमत्ता की धाक नहीं जमे, तब तक वह कैसे माने कि ईश्वर उससे दांव पेच करने के अतिरिक्त कुछ कर रहा है? तो ईश्वर ने एक दांव और खेला शेखर पर अपने को प्रमाणित कर देने के लिए। एक दिन शाम के वक्त शेखर को लगा घर का वातावरण कुछ बदल गया है, मानो किसी बोझ के नीचे दबा हुआ सा। और यह भी लगा कि यद्यपि सब काम पहले की तरह ही हो रहे हैं, कोई नई नीति की बात नहीं हो रही है, फिर भी ऐसा जान पड़ने लगा है कि काफी चहल पहल हो रही है। शेखर ने आया जिन्या से पूछा, आज क्या हो रहा है? कहाँ शेखर ने अनायास ही कह दिया, भीतर। जिनिया ने हंस दी, फिर बोली, कल पता लगेगा, ईश्वर अच्छी करे। इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। शेखर की या धमकी देने की, वह जाकर माँ से कह देगा कि जिन्निया रसोई में घुस आई है और रसोईया के आगे नाचा करती है। उसने लापरवाही से कहा धत और चली गई। किसी तरह सोचता सोचता शेखर सो गया, लेकिन सवेरे उठते ही उसे फिर यह बात याद आई और वह भागा हुआ माँ के कमरे की ओर गया, उस कमरे की ओर जहाँ माँ कुछ दिन से अस्वस्थ पड़ी थी। दरवाजे पर ही पिता को देखकर वह सहम गया। जब पिता निकल गए तब वह फिर आगे बढ़ा। तब जिन्निया कमरे से एक बंडल सा उठाए हुए बाहर निकली और बोली, शेखर देख तेरा नया भाई। और तभी बंडल के भीतर से एक नया भाई नामधारी जीज ने अपने शुद्र शरीर के पूरे जोर से चिल्लाने लगी। थोड़ी देर तो विस्मयकारी घटना के आतंक में शेखर स्तब्ध रह गया। फिर उसने डरते डरते बंडल को छूते हुए कहा, हमें दिखाओ। जिन्निया ने दिखाया। देखकर शेखर ने कुछ निराश सा होकर कहा, बस, क्योंकि उसकी तो मुट्ठियाँ भी नहीं खुलती और देखना तो उसे आता ही नहीं। विस्मय हट गया, तब प्रश्नों की बाढ़ आई, या कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन लाया, रवि भी ऐसे ही आया था, सब कोई ऐसे ही आते हैं। जिन्निया इन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी और शेखर उन्हें स्वीकार करता जा रहा था, लेकिन जब शेखर ने पूछा बच्चे क्यों आते हैं और उत्तर मिला ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है, तब उसने जान लिया कि शुरू से अंत तक झूठ बताया गया है और वह एक गुस्सा भरी निगाह से जिन्निया को देखकर बाहर चल दिया। माता पिता बहन आने वाले नौकर कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। पशु पक्षियों की बात वह समझेगा नहीं। यदि वह पक्षी होता तब शायद यह रहस्य समझ सकता, क्योंकि पक्षी तो झूठ नहीं बोलते, उनका तो ईश्वर नहीं है। लेकिन है किसका ईश्वर? शेखर ने दपोर्ध्वंत स्वर में कहा, नहीं है ईश्वर, नहीं है, नहीं है। अपने ही पूछे हुए प्रश्न ने, अपनी ही कही हुई बात, एक बात ने शेखर के जीवन की गति बदल दी। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं कि है कि उसका स्वामी निर्देशक भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहां बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है। जो बात नहीं जानती वहां पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। इसका प्रभाव कम से कम लोगों की दृष्टि में उस पर अच्छा नहीं पड़ा। वह मनचाला उर्दित सबसे अलग रहने लगा, अड़ियल टट्टू हो गया और उसे सीधा करने के लिए जो उपचार किए गए उनका भी उल्टा असर हुआ। स्कूल वह जाता ही था, पर अब स्कूल में भी वह बदलने लगा। उसके शांत स्वभाव के कारण उसे क्लास का मॉनिटर बना गया था, लेकिन अब वह सदा कुछ शरारत करने की ताक में रहने लगा। बुद्धि उसकी तीव्र थी, वह बिना ध्यान दिए भी क्लास में किसी से पीछे नहीं रहता था, इसलिए उसे हर समय शरारत सोचते रहने में कोई विशेष विघ्न नहीं हुआ। घंटी बज गई थी, लड़के सब क्लास में जमा थे। शेखर ने हाजिरी की कॉपी, खानियाँ, झाड़न इत्यादि लगाकर मेज पर रख दिए थे, पर मास्टर साहब अभी नहीं आए थे। मास्टर की अनुपस्थिति में मॉनिटर की हैसियत से शेखर का काम था कि क्लास को वश में रखे। इसका तरीका शेखर ने यह निकाला कि सब लड़के मिलकर एक काश्मीरी बजारू गीत गाएं। वह स्वयं अगुआ था, तब लड़कों को क्या डर। गाना शुरू हुआ, कभी दो कड़ियाँ भी नहीं गाई थी कि मास्टर साहब आ पहुँचे। एकाएक छा गए, सन्नाटे में उनका फटे बांस सा स्वर बोला, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर सामने खड़ा था। यह क्या है? कुछ नहीं, हम समझे कि आप आज देर से आएंगे, इसलिए। यह खप किसने आरंभ की? सब चुप रहे। ऐसे अवसरों पर लड़कों में एक स्वाभाविक शब्दहीन समझौता रहता है। मास्टर ने और भी कर्कश स्वर से पूछा, किसने शुरू की थी? क्षण भर में चुप्पी रही। फिर एक बेडोल मुसलमान लड़का, जिससे सारी क्लास को घृणा थी, आगे बढ़ आया और बोला, मॉनिटर ने सबके सबको गाने को कहा था, मैंने नहीं गाया। शेखर और उसके दो अंतरंग सखा तीनों एक कतार में मुर्गा बन खड़े हैं, यानी टांगों के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़े खड़े हैं। मास्टर शेखर को ठीक सामने खड़ा है और कह रहा है, और ऊंचा उठो, और ऊंचा उठो। शेखर से मॉनिटर छीनकर उस मुसलमान लड़के को दे दी गई, या कोई परवाह की बात नहीं, लेकिन सारी क्लास के सामने इस प्रकार का अपमान उसे सहय नहीं हुआ। सारी क्लास उसकी खिल्ली उड़ाए, कभी नहीं। और धड़कते हुए क्रोध ने ही उसे बदला लेने का उपाय बता दिया। मास्टर की आज्ञानुसार वह और उठा और ऐसा करते हुए जानबूझकर उलट गया, कलाबाजी खाकर नीचे गिरा और उसके भारी फुल बूट जाकर उसके मास्टर के पेट में। मास्टर एक हुक करके बोर्ड से टकराया, सारी क्लास खिलखिला उठी। इस घटना इतना आकस्मिक जान पड़ रही थी कि क्षण भर मास्टर साहब भौचक से रह गए। जब उन्होंने शेखर को उठकर खड़े हुए उनकी ओर घूरते देखा, तब ही उन्हें खोई हुई वाणी मिली। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, देखूंगा तुम्हें। लेकिन उनकी धमकी व्यर्थ गई। शेखर ने ऐसे स्वर में कहा जैसे किसी कीड़े को कह रहा हो, तुम उल्लू, और तीर की तरह क्लास से बाहर हो गया। पीछे क्लास की हंसी उसे सुन पड़ी और जाना कि जीत उसी की हुई है। उस दिन से शेखर स्कूल नहीं गया। इससे उसके चरित्र में त्रुटियां अनेक रह गई, लेकिन एक शक्ति भी उसने पाई जो स्कूल में कम मिलती है। उसने अकेले होने का सामर्थ्य पाई। स्कूल में टाइप बनते हैं वह बना व्यक्ति, लेकिन इतना अलग, इतना अकेला कोई भी नहीं है, उसके संसार में कोई नहीं। शेखर के जीवन में मनुष्य का स्थान पशुओं ने, पक्षियों ने, कीड़े मकोड़ों, सांपों, फूल पत्तों, घास, मिट्टी पत्थर ने लिया था। जिस आसन से मनुष्य समाज का देवता ईश्वर भ्रष्ट हो गया था, वह स्थान लिया जीव जगत की देवी प्रकृति ने। सरस्वती अब भी शेखर को पढ़ाती थी और वह मौलवी साहब भी उसे पढ़ाने के लिए रख गए थे। लेकिन शेखर का दिन मौलवी साहब के जाने पर आरंभ होता था और उनके आने के समय समाप्त हो जाता था। मौलवी साहब एक बुरे स्वप्ने की तरह भर थे। बाकी दिन शेखर घूमता रहता था, जिधर पैर ले जाते उधर चला जाता और जो दिख जाता देख लेता। कभी सांपों को छेड़ता, कभी सांप के पास निश्चल बैठ जाता और प्रतीक्षा करता कि सांप उसके ऊपर से निकल जाए, ताकि उसे पता लगे सांप आगे कैसे सरकता है। उसने सुना था कि सांप के पेट में जो झिल्ली होती है, उसी के सहारे वह अपने को आगे धकेलता है, और यही वह अनुभव करना चाहता था। कभी तितलियां पकड़ता, उनके रंग देखता और फिर उन्हें छोड़ देता। कभी फाकता का स्वर सुनता तो उसकी नकल करता और घंटे ही देखता रहता कि किस प्रकार चिढ़कर अपनी बोली बार बार बदलती जाती है और प्रतीक की प्रतिध्वनि पाकर चुप हो जाती है। कभी वह पेड़ों पर चढ़ता, घोंसले की गड़न देखता और घोंसले में भिन्न भिन्न प्रकार के अंडे देखकर दिनों प्रतीक्षा करता कि वे फूटे, ताकि बच्चे देखकर पहचाने कि किस पक्षी का अंडा कैसा होता है। कभी वह देखता कि किस प्रकार वसंत के दिनों नर चील बहुत ऊंचा उड़ जाती है और मादा उसे पुकारती रहती है, और घंटों की प्रतीक्षा के बाद वह उतरता है। एक बार वह उल्लू की बोली घंटों सुनता रहा और सोचता रहा कि या मुंह से बोलता है या नाक से? पहले पहल जब उसने पपीहा की पीऊ की सुनी तो जाना कैसे उसके मन की यह बात बैठ गई कि पपीहा नीले रंग का होता होगा और उसकी छाती लाल होती होगी। कुछ दिन बाद जब उसने इसी प्रकार का एक पक्षी देखा तब तो वह विहल प्रतीक्षा में बैठा रहा कि वह बोले, और जहाँ तहाँ वह पक्षी गया तहाँ तहाँ भागा। आखिर उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। सूर्य अस्त के समय पक्षी ने एक अंजीर के पेड़ पर बैठकर चोंच खोली और कर्कश स्वर में पुकारा, चे ऊं। शेखर का हृदय धक सा हो गया। कई दिन बाद उसने जाना कि पपियाहा नहीं नीलकंठ था। एक दिन वह जंगल में घूमता हुआ भटक गया। वह या इसके अत्यंत असहाय सहायता के प्रति उपेक्षा लिए अकेलेपन का प्रमाण है कि वह घबराया नहीं, इधर उधर भागा नहीं। जो कभी जंगल में भटकते हैं वे ही समझ सकते हैं कि उस समय न घबराना क्या चीज है। अपनी छाती तक लंबी घास को देखकर आसन ना सा बना कर बैठ गया और बादलों को देखने लगा। कभी जब कोई जंगली मक्खी भिनभिनाती हुई उसके पास आती तब वह उसी की ओर देखने लगता। उसकी हरी और नीली धातु की तरह चमचमाती हुई पीठ, मटमेला लाल सिर, काली मूछें सब मन में नोट करता रहा। वह जंगल सरकारी रक था, वहां शिकारी की मनाही थी। शेखर के बैठे बैठे एक हिरण आया, कुछ संशक सा होकर थोड़ी देर बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रहा, फिर चौकड़ी भरता हुआ भागा और क्षण भर में ओझल हो गया। वह गठन का सौंदर्य, वह गति का लय, शेखर ने चित्र बहुत देखे थे, वर्णन भी पढ़े थे, पर असली वस्तु। जोश में आकर शेखर उठ खड़ा हुआ, तभी उसके पास ही घास में से एक भद्दा सा जानवर निकला और फुसफुकारता हुआ भाग गया। शेखर समझ नहीं पाया कि वह घोड़ा है या भैंस था, वह दोनों जैसा और दोनों से भिन्न। शेखर सोचता हुआ एक और चल पड़ा। अभी उसे घर पहुंचने की चिंता नहीं थी, अभी तीसरा ही प्रहर था। चलते चलते घास में से निकलकर एक खुली जगह में आकर उसने देखा एक लड़की तितली पकड़ने का जाल लिए इधर उधर भाग रही है। उसके बाल मुंह पर बिखरे रहे हैं और उसे संसार का कुछ पता नहीं है। शेखर रुक कर उसे देखने लगा। कितनी ही देर तक देखता रहा, एकाएक लड़की ने चौंक कर मुड़कर उसे देखा, ठीक वैसे ही जैसे हिरण ने देखा था, और जाल लटका कर देखती रही। शेखर उसके पास गया और नम्रता से बोला, तुम कौन हो? हम। इससे आगे शेखर को बात नहीं सूझी, बदल कर बोला, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। लड़की ने उत्तर ना देकर पास जाती हुई एक तितली की ओर जाल फेंका, वह निकल गई। शेखर हंसने लगा, बोला, ऐसे नहीं, लाओ मैं बताऊं। लड़की ने कहा, नहीं, हम आप ही पकड़ेंगे। लेकिन उसके कहते कहते शेखर ने जाल ले लिया और झपट कर तितली पकड़ दी। लड़की ने रुष्ट मुद्रा में उसकी ओर देखते हुए तितली ले ली, बोली, नहीं। शेखर ने कहा, और पकड़ दूं? नहीं, अब बस, मैं थक गई। वह एक और चलने लगी। शेखर ने पूछा, कहाँ जाओगी? घर। कहाँ पर? उसे थोड़ी उठाकर कहा, उधर। किधर या ठीक पता नहीं लगा। शेखर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे घर। क्यों? कहकर वह चलती गई। शेखर भी पीछे पीछे चलता गया। कितनी दूर है? थोड़ी दूर। तुमने देखा नहीं? नहीं। तब यहाँ किधर से आए? शेखर ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गया था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी घर आ गया। शेखर ने पूछा, तितलियाँ कहाँ रखोगी? पता नहीं, टोकरी में रख छोड़ूंगी। नहीं, मैं बताऊँ, कहकर शेखर ने उसे कोठी के दरवाजे पर ले गया। प्रत्येक दरवाजे में दो किवाड़ थे, एक लकड़ी का, उसके बाहर एक जाली का, और इनमें काफ़ी अंतर था। शेखर ने कहा, इसके बीच में बंद कर दो। बालिका ने श्रद्धा से कहा, या तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। शेखर ने मानो उस श्रद्धा की ओर ध्यान ना देते हुए कहा, और थोड़े से पत्ते भी डाल दो तब मरेगी नहीं। शेखर ने पूछा, रास्ता किधर से है? उधर सीधे, थोड़ी देर जाकर एक तालाब आएगा, वहाँ से दाहिने मुड़ जाना, तब स्कूल आ जाएगा, वहाँ से तो पता है ना। हाँ कहकर शेखर चलने लगा। बालिका को शायद आशा थी कि वह कुछ अधिक कहेगा। वह उसे जाते हुए कुछ देर देखती रही, फिर पुकार कर बोली, फिर आओगे ना? शेखर ने बिना मुंह फेरे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिभा, मिस प्रतिभा लाल। अच्छा, शेखर ने जानबूझकर इसका कोई इंगित नहीं दिया कि या अच्छा फिर आने के बारे में है या नाम के बारे में। मैत्री तो वह थी, लेकिन थी विचित्र। चंचल की घास में वह दोनों चले जाते, शेखर कहीं लेट जाता और प्रतिभा कहीं तितलियों के पीछे भागा करती। कभी फूल बिना करती, कभी बांसों से फूल लाकर जमा करती, और फिर एक-एक करके उनका मधु चूसा करती। कभी यूं ही खड़ी रहकर तरह तरह की हंसा हंसी करती। बीच बीच में वह देख लेती थी कि शेखर वहाँ वहीं तो है, चला तो नहीं गया, और फिर शांत होकर अपने खेल में लग जाती थी। शेखर से कभी बात करती थी तो तभी जब कोई तितली बहुत चेष्टा पर उसकी पकड़ में नहीं आती थी, या सब कोई फूल उसकी पहुंच पर से परे होता था, तब वह शेखर की सहायता मांगती थी और शेखर झटकर उठता, उसका काम पूरा करके फिर अपने स्थान पर आकर लेट जाता था। या कभी प्रतिभा कुछ अपने बड़े बड़े बांस के फूल उसके लिए बचा रखती थी और पास आकर पूछती थी, मधु नहीं खाओगे? शेखर अपनी ओर बढ़ाए हुए फूल लेकर मधु चूसने के बजाय सारा फूल खा जाता था और वह खूब हंसती थी। अरे मधु खाना भी नहीं आता? कई बार आवृत होकर भी यह बात पुरानी नहीं होती थी। प्रत्येक बार प्रतिभा उतने ही उल्लास से हंसती थी। शेखर प्रतिभा के साथ हंसता खेलता था, उसकी प्रत्येक बात मान लेता था और निष्ठा के साथ पूरी करता था। फिर भी उसका शक नहीं स्थापित हुआ था। शेखर प्रतिभा का संगी बनकर अपने कवच में से बाहर निकल आया था। अभी भी वैसा ही अलग अकेला व्यक्ति था। किसी की तरह भी अलगाव या दूरी पहचानने में बच्चे में बहुत तीव्र होते हैं वह, और प्रतिभा के अतिरिक्त कोई भी लड़की होती तो फौरन इस बात को ताड़ लेती और बुरा मानती। पर प्रतिभा अपने में ही इतनी मस्त थी, शेखर के स्वामित्व की धूप में उड़ने वाली तितली सी, कि उसने कुछ नहीं देखा। वह अपने अंतरम में बिल्कुल स्वार्थी थी और उसकी मैत्री निभ रही थी तो केवल इसलिए कि शेखर उससे कुछ भी नहीं मांगता था। उसे जैसी ही वह थी उसी पर पाकर संतुष्ट था। यह नहीं था कि शेखर इतना दानी था, उसने प्रतिभा से कभी इतना अपनापा अनुभव ही नहीं किया और उससे कुछ मांगे। एक दिन प्रतिभा ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम हरिदत्त है? शेखर ने विस्मय से कहा, हाँ क्यों? मेरे पिता उन्हें जानते हैं। आज तुम्हें मेरे घर चलना होगा। शेखर प्रायः रोज ही वहाँ जाता है। आज इस विषय चलने की बात सुनकर बोला, रोज तो चलता हूँ दूत, वैसे नहीं, वहाँ पापा से मिलना होगा, खाना खाना होगा। शेखर ने थोड़ी देर बाद कहा, क्यों? क्यों क्या? पापा तुम्हारे पिता को जानते हैं, अब हमें ऐसे मिलने की जरूरत नहीं, अब पूछ कर आया करेंगे। शेखर थोड़ी देर सोचता रहा, उसे ध्यान आया वह पिताओं के संसार में नहीं है। उसे यह भी लगा कि उसके संसार में पिता ना आए तो कोई हर्ज नहीं है। प्रतिभा खेलती है, उसके खेल के आड़ में वह अकेला रहता है, या ठीक है, या स्थिति बदलने पर शायद। शेखर ने फिर कहा, क्यों? इस क्यों का प्रसंग क्या है? प्रतिभा को सहसा नहीं समझ में आया। उसने अभिमानी रानी की तरह कहा, क्यों क्या, मैं कहती हूँ इसलिए। फिर कुछ आग्रह से कहा, मेरा कहा नहीं करोगे? शेखर ने कहा, हूँ। मिस्टर लाल ने अपनी साथ वाली कुर्सी की ओर इशारा करके कहा, बैठो शेखर। शेखर बैठ गया। सामने प्रतिभा बैठी थी और उसके साथ प्रतिभा को बड़ी बहन। बीच में मेज पर छुरी, कांटे, तस्तरियां इत्यादि सजी हुई थी। मिस्टर लाल इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर हैं, स्वयं लौटे हैं तो साथ इंग्लैंड का कुछ हिस्सा लेते आए हैं और भारत की उर्वर भूमि में उसे बोकर उसी की छाया में रहते हैं। इस समय डिनर का आयोजन है और उसी की प्रतीक्षा। शेखर छुरी कांटे से खाना नहीं जानता। बैठे हुए वह इसी बात को सोच रहा है, लेकिन यह वह कहना भी नहीं चाहता। इसी सरसोपंज में डिनर आरंभ हो आता है। सूप आता है और सब लोग खा लेते हैं। दूसरा कोर्स आता है। शेखर औरों के अनुकरण में पहले छुरी कांटा उठाता है, लेकिन वह देखता है कि बाएं हाथ से कांटे का संचालन उससे नहीं हो सकता। तब वह छुरी और कांटे को बदल लेता है। बाएं हाथ से वह कुछ काट भी नहीं सकता, फिर भी किसी प्रकार कांटे पर कोर लाद कर और मुंह की ओर ले जाता है तो खाली कांटा ही मुंह तक पहुंचता है, कौर गिर जाता है। प्रतिभा खिलखिलाकर हंसती है, अरे खाना भी नहीं आता। बड़ी बहन कहती है, हिस। शेखर छुरी कांटा रख देता है। मिस्टर लाल देखते हैं और अनदेखी कर जाते हैं कि वह अधिक खिन ना हो। सब्जी आती है, मिस्टर लाल के लिए गोश्त आता है, सलाद आता है, आइसक्रीम आती है। शेखर खाता नहीं, देखता ही रहता है। जब सब कुछ हो चुकता है तब वह देखता है कि उसके सामने पड़ी पड़ी आइसक्रीम पिघल गई है और लोग चम्मच से खा रहे हैं, लेकिन वह चम्मच का उपयोग जानते हुए भी प्याला उठाकर उसे पी जाता है। प्रतिभा कहती है, देखो पापा, देखो कैसे खा रहा है। मधु खाते समय शेखर फूल भी खा जाता है, तब भी प्रतिभा हंसती है। तब शेखर स्वयं मुस्कुराता भी नहीं, लेकिन होता है प्रश्न। पर अब शेखर उठ खड़ा हुआ, नैपकिन मेज पर पटका और बिना किसी और देखे जल्दी से बाहर चला गया। दूसरे दिन शेखर नदी के किनारे भटक रहा था। जंगल कहीं नहीं था और प्रतिभा मर गई थी। नदी के अध बीच एक टापू था, उसमें देवी का एक मंदिर था। शेखर अपना समय वहीं बिताने लगा। वह मंदिर के बाहर बैठता रहा, वहां आने जाने वाले उपासकों के देखता करता। उनकी श्रद्धा भाव देखकर उसके मन में वही पुराना प्रश्न फिर उठता और बैठ जाता। उसे आस्था नहीं होती, फिर भी मंदिर का वातावरण उसे आकर्षक जान पड़ता और वह नित्य आता। नदी में सांप थे, शेखर हमेशा पुल पर से पार होकर टापू पर आया करता था, लेकिन उपासक पानी में से चलकर आते थे। एक दिन शेखर के देखते देखते एक को सांप ने काट खाया। वह उचक कर बाहर आया, पुकार कर बोला, जय देवी माता की, और मंदिर के भीतर चला गया। पूजा करके बाहर निकल आने पर ही उसने कांटे का उपचार आरंभ किया। घंटे भर बाद शेखर के सामने ही उसने एक बार फिर कहा, जय देवी माता की, और वह चुप हो गया। और कुछ मिनट बाद लोग उसे उठा ले गए। शेखर का नकारात्मक विश्वास हिल गया। घर लौटते हुए वह फिर पूछने लगा, ईश्वर क्या सचमुच तू है? श्रीनगर में चश्मा शाही से ऊपर एक महल का खंडर है। कहते हैं कि यह महल राजकुमारी जेबुनित्सा ने बनवाया था और यहाँ एकांतवास करती हुई वह कविता लिखा करती थी। महल चाहे किसी ने बनवाया हो, जिसने वह स्थान चुना था वह अवश्य कवि था। वहाँ भी सांप थे। जब शेखर पहले पल वहाँ गया तब उसने बहुत सी कहानियाँ सुनी। वहाँ भूत रहते हैं। उस महल के कमरों में छतें नहीं है, इसलिए रात को वहाँ प्रेत उतर आते हैं, परियाँ नाचती है, और महल का नाम था परी महल। शेखर ने लौटती बार निश्चय किया कि वह कभी वहां अकेला आएगा और थोड़े ही दिन बाद उसे अवसर भी मिल गया। शेखर वहां तीसरे प्रहर पहुंचा। महल के कमरों की छत तो थी नहीं, वह दीवार पर चढ़ गया और सामने की ओर आकर नीचे डल झील का दृश्य देखने लगा। वह डल देख रहा था, डर से बहुत अधिक कुछ देख रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर एक सम्मोहन सा छा गया, एक मूर्छा सी। उसे लगा उसके पास नहीं, उसके भीतर, उसके सब और उस कुछ आया है, कुछ जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो बहुत सुंदर है, बहुत भव्य, बहुत विशाल, बहुत पवित्र। इतना पवित्र कि शेखर को लगा वह उसके स्पर्श के योग्य नहीं है, वह मैला है, मल में आवृत है, छिपा हुआ है। उसी सम्मोहन में उसने एक एक करके अपने सब कपड़े उतार डाले, नीचे फेंक दिए और आंखें मूंद कर खड़ा हो गया, बिल्कुल नंगा, आकाश के सामने और उस पवित्र से परिपूर्ण, उसके स्पर्श से रोमांचित। बहुत देर बाद चौंक कर उसने आंखें खोली, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बिना एक बार मुड़कर देखे भी सीधा घर की ओर भागा। वह क्या था? ईश्वर, प्रकृति, सौंदर्य, शैतान, दबी वासना, उसे नहीं मालूम, पर उसने वह संग, वह कैवल्य फिर कभी नहीं प्राप्त किया। वह फिर कभी वहाँ नहीं गया। बुद्ध भी बोधि वृक्ष के नीचे दोबारा नहीं बैठे होंगे। खूब बर्फ पड़ी है और पड़ रही है। शेखर के पिता सपरिवार एक बर्फ से ढकी हुई सड़क पर मोटर में बैठे चले जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी बर्फ भीतर पहुंच जाती है, तब कोई तंग होता है और बाकी हंसते हैं। सभी को मतली हो रही है। शेखर के भाइयों ने खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर के भी कर दी है और कार ने उसकी दुर्गंध भर रही है। शेखर आगे बैठा है, इसलिए उसे इतना कष्ट नहीं हो रहा है। वह गिरती हुई बर्फ की ओर देखता जा रहा है। शेखर के पिता की ओर फिर बदली हो गई है, इसलिए वे इतनी देर तक श्रीनगर में हैं, नहीं तो वे कभी के जम्मू चले गए होते, और अब वे बिहार की ओर जा रहे हैं। एक बार सड़क की मोड़ पर पिता ने कहा, वाह देखो जहाँ से हम आए हैं। शेखर ने ऊपर देखा, जिस पथ पर वे उतर कर आए थे वह दिख रहा था, और उसके पीछे एक विस्तीर्ण सफ़ेद पर्दा जिसके पीछे क्या क्या छिपा हुआ था। शेखर को याद आया, चलने से कुछ दिन पहले उसने सबसे छिपा कर बर्फ में एक आदमी बनाया था और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आया था, उसे वहां रख कर सो गया था। दूसरे दिन उठकर उसने पाया कि वह पुतला कहीं नहीं है और फर्श भीग रहा है। उसने छटपटा कर पूछा था, माँ मेरा पुतला किसने उठाया, बहन मेरा पुतला किसने उठाया, भैया मेरा पुतला किसने उठाया, और किसी ने नहीं बताया। सबने कहा कि हमने नहीं देखा, वह आखिर गया कहाँ, या उसे समझ नहीं आया। और उस बर्फ के पर्दे की ओर देखते देखते उसके मन में फिर उसी प्रश्न का उदय हुआ, ईश्वर।